कराना चाहता हूँ। श्रीमान मुकुंद दास जी जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं आज के, आपने लंदन से MBA किया और MNC में कार्यरत थे, कार्य करते हुए उन्होंने वहाँ से अपनी जो है रिजाइन किया और बाल्य मतलब छोटी आयु में 26 वर्ष की आयु में ही गृह संन्यास धारण किया। आपने पूरे भारत का भ्रमण किया, शिक्षण संस्थाओं में आप मोटिवेशन स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप डिस्कवरी ऑफ योर सेल्फ के जनक भी हैं। वर्तमान में आप श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर द्वारका के उपाध्यक्ष भी हैं, आप भगवत कथा भी करते हैं। दूसरा परिचय है, आप वैसे सब ज़्यादातर जानते हैं, श्रीमान अनिल जी आप पिछले 6 वर्ष तक आपने प्रचारक के रूप में कार्य किया, आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, वर्तमान में आप LED लाइट के व्यवसाय में हैं और अभी द्वारका जी के जिले के जिले कारोबार। अभी मैं अनुरोध करूँगा अपने अनिल जी से कि अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें।
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में और विशेषकर धन्यवाद देंगे अनिल जी का और बाकी सभी सदस्य जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं। इस सिद्धार्थ शाखा के सभी जो कार्यकर्ता हैं बड़े ही उत्साही हैं, तो आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोगों का स्वागत किया जाए। हरे कृष्णा। तो ऐसा उत्साह बहुत जीवन में आवश्यक है। विशेष संघ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप लोगों के कार्यशैली को देखकर मुझे अपना बचपन याद आया, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे प्रभु जी बड़े उत्साही सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो हमें भी संघ में ले जाया करता था और वहाँ पर शाखा में हम जाते थे और वहाँ पर काफ़ी साधु संतों की सेवा भी करते थे। कभी कभी संत आते थे तो उनको प्रसाद वितरण करना और बाकी सेवाएँ और रोज के खेल आदि तो हमारे रहते ही थे, तो उससे इतना उत्साह रहा पूरा जीवन, शारीरिक बहुत ही सहायता मिली संघ के कारण। और कहते हैं जैसे कि कलयुग के लिए विशेष प्रावधान है, कहते हैं कलयुग है संघ शक्ति, कलयुग में सिर्फ एक ही शक्ति है, वो क्या है? संघ की शक्ति। तो ये जो संघ है ये कई प्रकार का संघ है, जैसे कि ये आपका एक है राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवा संघ और एक है भक्तों का संघ। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा धन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तुम्हारे मन को अगर सतोगुणी बनाना है तो उसके लिए हमारा संग भी हमारा अन्न भी अच्छा होना चाहिए। आज जीवन में देखें तो तमोगुण का बड़ा ही प्रावधान है, हर जगह तमोगुण तमोगुण छाया हुआ है। टेलीविजन खोलेंगे तो क्या दिखेगा? तमोगुण है ना। बॉलीवुड और हॉलीवुड का जो प्रचार है, अभी हम संजय जी से अजय जी से चर्चा कर रहे थे, वो भी यही बोल रहे थे कि बड़ा ही हॉलीवुड ने क्या किया, हमारे संस्कार समाप्त कर दिए हैं कि नहीं। तो जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जिस केंद्र से हम आए इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, तो वो भी संघ है और ये भी संघ है। ये राष्ट्रीय संघ है, हम अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय संघ एक राष्ट्रीय संघ के साथ मिलेगा तो कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। आप जाए। तो इसलिए ये बहुत ही मुख्य है कि यहाँ पर आए सभी लोग जो हैं वो योग कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी की बात है। मैं पढ़ रहा था संघ के बारे में कि आपके संघ का जो शुरुआत करी 1925 में डॉक्टर केशव राव हेडगरे, तो वो जो हेडगवार जो थे वो डॉक्टर केशव उनका नाम था, आप देखिए केशव। तो मैं सोच रहा था कि हमारा आज ये पहला प्रवचन नहीं हो रहा है जहां पर कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा होने जा रही है। आप देखिए एक डॉक्टर केशव, जो केशव मतलब है, शास्त्र उसका वर्णन कर रहे हैं, केशव शब्द का अर्थ है के मतलब कि जिनके केश लंबे हैं, ऐसे भगवान जिनके बारे में जिनके केश लंबे हैं, या फिर जिन्होंने केशी नामक राक्षस का वध किया है वो कौन है, केशव है। और कई जगह इसको ऐसे भी वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा शिव और वह से विष्णु, ब्रह्मा शिव और विष्णु भी जिनकी उपासना करते हैं उनका नाम है केशव, है ना। तो आप लोग ऐसी चर्चा कभी सुने नहीं होंगे, आपको लगेगा हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया है। इस संघ के साथ में सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन बहुत मजा आ जाएगा जब हम संघ के साथ में शास्त्रों को भी अपने जीवन में उतार लें। आप देखिए वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पूर्व 108 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, और उसमें से सभी पुराणों का सार है, कौन सा सार बताते हैं, श्रीमद् भागवत सार है ना, वो सार है 18वां पुराण। तो जैसे कि हमारे जीवन में जीने के लिए एक मैनुअल की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को एक मैनुअल चाहिए होता है। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कोई मैनुअल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कौन सा मैनुअल कौन बताएगा। एक मैनुअल है जो गाड़ी खरीदने जाओ साथ में मिलता है, उसका नाम क्या है, क्या नाम होता है, गाड़ी खरीदने गए आपने होंडा कार खरीदा, आपने मर्सिडीज खरीदा, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, क्या नाम होता है उसका, हाँ पुस्तक, ऑपरेटिंग मैनुअल, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मैनुअल, है ना, जिसमें निर्देशिका होती है कैसे इसका प्रयोग करना है कि नहीं। मोबाइल खरीदा है, सब लोगों के पास मोबाइल होगा, कितने लोगों के पास मोबाइल है यहाँ पे, आप लोगों के पास नहीं है, हाथ खड़ा करिए, संघ में हाथ तो ऊंचा जाता रहना चाहिए, जय भारत ऐसे करते हुए। तो सबके पास में मोबाइल है आज, लेकिन वो आप सोचिए उस मोबाइल को जब हम खरीद के लाते हैं तो उस मोबाइल के साथ में एक पुस्तिका आती, क्या कहते हैं उसको, निर्देशिका, कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं। तो जब ये मनुष्य शरीर हमें मिला तो 1925 में डॉक्टर केशव का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस संघ की रचना करी, लेकिन क्या ये मनुष्य शरीर 1925 में ही उत्पन्न हुआ है, तो ये इस मनुष्य शरीर का क्या हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, कहते हैं इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम केशव रखा, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण भगवान है ना। थोड़ा हमें क्या लगाना चाहिए, यजंते ही सुमेधसा, इस भक्ति में मार्ग में वही जाते हैं जो मेधा मतलब बुद्धि, सुमेधा मतलब जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, जिसके पास बुद्धि नहीं होगी ना वो कहेगा अरे मंदिर से एक पंडित जी आए थे आज सत्संग में कार्यक्रम में। पंडित मतलब क्या, भगवद गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनीचा ए पशुपाके चा पंडिता नाम समदर्शिनः। पंडित कौन है, वो पंडित है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, ब्राह्मण को भी, गाय को भी, हाथी को भी और चंडाल को भी, लेकिन अगर कोई ऊंचा है कोई नीचा है तो वो पंडित नहीं है। विद्या विनय संपन्न, जिसके पास विद्या होगी वो अपने आप विनम्र बन जाएगा, जिसमें अकड़ है उसको बोलते भैया अभी मत अकड़ो, मरने के बाद तो अकड़ ही जाता है शरीर, ये अकड़ने का कार्यक्रम मरने के बाद का, अभी विनम्रता। विद्या विनय संपन्न, जिसमें विद्या है वो विनय वाला है, तो विनयशील व्यक्ति प्रगति करता है। उसके लिए बहुत प्रमुख है ये जानना कि अगर एक मैनुअल, अगर मान लो आपने बिना पढ़े लिखे एक टीवी खरीद के लाए, उसमें लिखा था लाल रंग का तार लाल में जाएगा, हरे रंग का हरे में जाएगा, पीला पीले में जाएगा, रेड ब्लू ग्रीन ग्रीन, लेकिन अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया बिना पढ़े तो क्या होगा, हाँ जी चलेगा नहीं, फट भी सकता है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम देखते हैं हमारी शारीरिक तो ठीक है, संघ की कृपा से, अनिल जी की कृपा से हम सब जुड़े हुए हैं, शरीर तो ठीक है रोज एक घंटा व्यायाम करके योग करके, लेकिन मानसिक दशा कैसी है, अंदर से त्रस्त है पस्त है और माया में ग्रस्त है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए मनुष्य शरीर को जीने के लिए एक मैनुअल दिया, कौन सा मैनुअल है, श्रीमद् भगवद गीता, ये मैनुअल है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी ने शरीर के महत्त्व से हमारी रचना करी और हमको ये एक भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर कहते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नील, भगवान शब्द का फुल फॉर्म है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, भगवान का पूर्ण करें, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील, पंच तत्व बन मिला शरीरा, जो ये शरीर है ये इन्हीं पांच तत्वों से बना है, उसका जो परम तत्व है उसी का नाम भगवान है, उसी भगवान ने पंच तत्व का शरीर तो बनाया, लेकिन इस शरीर में से एक ऐसी चीज है जिसके चले जाने पर यह शरीर मृत शरीर हो जाता है, वो आप बताएंगे वो क्या चीज है। हाँ जी पक्का लॉक किया जाए, ठीक है। तो आत्मा जो है, अभी यहां पर दो वाक्य है, पहला वाक्य है क्या मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है, या मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा रहती है, कौन सा वाक्य सत्य है?
पहले वाला।
मैं आत्मा हूं जो इस, बहुत सुंदर बात, तो आप लोगों के लिए ताली होनी चाहिए, बहुत सुंदर। आप जानते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर कि मैं एक शरीर के धारण किया है, इसीलिए जब मैं मर जाता हूं तो कहा जाता है अरे पता है उनका शरीर शांत हो गया और वो चल बसे, वो चले और कहीं जाकर बस। तो आदमी पूछता है अरे जिनसे मेरा संबंध था क्या मैंने अपने पूरे जीवन में उन्हीं को वो माना, या फिर उनके अंदर जो आत्मा वो थे उनको मैंने वो माना? ऐसा मानते नहीं। आज मैं आपको बोलूं ना भजन करना चाहिए, आप कहेंगे भजन का कार्यक्रम माताओं के पास में, वो गाएंगे अपने राम सीता राम, वो गाएंगे, हम तो करेंगे योग शक्ति। लेकिन जब किसी का शरीर छूट जाता है, तिकती बन जाती है, कंधे पे लेकर चलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम, राम नाम सत्य है कि नहीं है? लेकिन एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी बड़ी विडंबना है संसार की, जब तिथि पे लेकर शमशान की ओर जाते हैं तो जो व्यक्ति लेटा होता है उसके लिए जो लोग उसे ले जाते हैं वो कहते हैं राम नाम, लेकिन पिताजी किसके लिए कहते हैं? तो पिता भी थोड़ा परेशान था, बोला किसके लिए कहते हैं मैं जानता नहीं। कहा बेटा जो मेरा मर गया है उसके लिए कहते हैं। कह रहा आपने कहा वो तो सुन नहीं सकता। तो बोले फिर अपने लिए कहते होंगे, अरे लेकिन आप लोग तो कभी राम का नाम दोबारा लेते नहीं एक बार अंतिम संस्कार के बाद में। तो इसका मतलब ये विडंबना है, आरएनई सिचुएशन ऑफ लाइफ, कि जो मर गया है वो समझ नहीं सुन नहीं सकता और जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकते हैं कि राम का नाम ही सत्य। अगर राम का नाम सत्य है तो क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? जब शरीर छूट जाता है तब कोई भी कार्य काम नहीं आता है, सिर्फ एक ही कार्य काम आता है, भगवान का नाम, क्योंकि हम जो है वो भगवान के अंश है। भगवान गीता में कहते हैं माम एव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्य। भगवान कहते हैं संसार में कौवा हो, बिल्ली हो, चूहा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब मेरे अंश है। तो कौन सा अंश है? ये शरीर तो पंच भौतिक, इसी संसार में मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो हम है आत्मा उस पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं? हम सब इसी पर कर रहे हैं, ऊपर वाले, ऊपर के शरीर पर जो यही जलने वाला है। किस पर काम करना चाहिए? उस पर किसने किया? बहुत ही बौद्धिक लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा यन्ते हि सुमेधसा, जो बुद्धिशाली होंगे वो बुद्धिशाली वर्ग इससे ऊपर चलेंगे। शरीर के लिए आवश्यकता है स्वस्थ रहना, क्योंकि ये साधन शरीर है, साधना करके भगवान तक जाने का। हम भी योग करते हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर आत्मा पर काम नहीं किया और शरीर छूट गया, अंत काले पछताए, अब क्या होने वाला है? चिड़िया चुग गई थी। और आप देखिए राम नाम सत्य को ऐसा ऐसा लिपिबद्ध कर दिया है लोगों ने कि ये मृत्यु संस्कार पे ही बोला जाए। चलो भाई चलो बोलो बोलो राम नाम सत्य है, लेकिन किसी की शादी में जाए आप और बोले राम नाम सत्य जी राम नाम सत्य, क्या करेंगे? हाँ जी मारेंगे, भागो भागो, आ गए राम नाम सत्य करने के लिए। किसी का जन्मदिन हो बोले जी बेटे का जन्मदिन है आइए प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, हाँ बेटा राम नाम सत्य है, बेटा राम नाम सत्य, मारो मारो इनको, क्या कह रहा है? तो देखिए हमने ही अपने संसार में ये राम का त्रेता युग का जो पृथ्वी है, कृष्ण का जो द्वापर युग की पृथ्वी है, उसी में से हमने भगवान का नाम हटा दिया और हम लगे हैं इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने। तो इस राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हिंदू धर्म को बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है कि इसके द्वारा आज आज आपके संघ के ही प्रधानमंत्री अरुण हैं, जिनके द्वारा भगवत गीता की भेंट पूरे विश्व को दी जा रही है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे क्रिमिनल हाथ लगा के कहता है जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वकील साहब जज साहब उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन जज साहब वकील साहब पढ़कर नहीं देखते इसमें लिखा क्या है, क्योंकि अगर देख लेंगे तो उनका खुद का जीवन भी बदल जाएगा। तो इसीलिए जितने भी बुद्धिशाली जीव हैं उनसे यह अनुरोध किया जाता है, जरा पढ़कर को तो देखिए एक बार इसके अंदर शास्त्र की दृष्टि से भगवान कृष्ण ने क्या कहा। तो मैं जहां भी जाता हूं प्रवचन देने के लिए, या फिर कार्यक्रमों में कॉर्पोरेट्स हो, स्कूल्स हो, या फिर जैसे आपकी सोसाइटी है, संघ है, वहां पर लोग एक प्रश्न बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है, पहले एक घंटा कसरत करें शरीर के लिए, फिर 9 घंटा परिवार की मेहनत करें, और फिर शाम को आकर ये गीता भी पढ़े, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो मैं उनसे एक बार पूछता हूँ कि ठीक है अभी तो आप टाइम नहीं कह रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा लोग कहेंगे कि ही पास दवे, वो चले गए, उनके पास टाइम नहीं। तो लोग कहते हैं काम के सिलसिले में दिन भर गए, बोलिए मेरे साथ में, काम के सिलसिले में दिन भर गए, बोलिए
काम के सिलसिले में दिन भर गए,
शाम को खबर आई उनके दिन भर गए क्या करेंगे भैया। तो इसीलिए काम तो करें, लेकिन काम के साथ में इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए जो ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कई लोग बोलते हैं कि आप लोग जी भगवद गीता को थोप रहे हैं हमारे ऊपर, हिंदू तत्व को थोपा जा रहा है इस विश्व के ऊपर। हमसे पूछते हैं आज हिजरी कैलेंडर जो है, इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, उसकी कौन सा साल चल रहा है, ये 1439 मतलब 1439 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब ने इस्लामिक धर्म को इस संसार में स्थापित किया। क्रिश्चियन कैलेंडर कौन सा चल रहा है, 2017 जॉर्जियन कैलेंडर, 2017 साल पहले क्रिश्चियन कैलेंडर इस संसार में आया जिसे आज हम भी पालन करते हैं 2017 कैलेंडर। उससे पहले देखें सिख धर्म 500 वर्ष पूर्व आया, अभी उसकी गुरु पूर्व बनाया गया कल ही रात्रि। लेकिन जो ये सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म भी 2500 वर्ष पूर्व आया इस संसार में, लेकिन सनातन धर्म युगों युगों से चला आ रहा है। तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है हिंदू और सनातन एक है या सनातन और हिंदू अलग है। देखा जाए सनातन शब्द का मतलब क्या है, सनातन का मतलब ये नहीं विभिन्न देवी देवताओं की फोटो लगा लेना और फिर उनको प्रणाम करना। सनातन का मतलब है उस प्रभु की आराधना करना जो सनातन है, एटर्नल है, मरता नहीं है, जन्म मृत्यु चक्र में नहीं है। और वो कौन पूजा करेगा, वो आत्मा जो एटर्नल है, इस जन्म मृत्यु चक्र के अंदर नहीं आती है। हमारा शरीर मरता है लेकिन हम नहीं, न जायते मृयायते वा कदाचिन भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर का हनन होने पर भी हमारा शनन नहीं होता, हम नहीं मरते हैं, लेकिन जो मरता है इसका मतलब अभी उसने गीता के ज्ञान को, इस वैदिक ज्ञान को, इस भारत भूमि के ज्ञान को अभी तक अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार नहीं किया। तो ये हिंदू है, ये कहां से शब्द आया, सनातन धर्म था द्वापर युग के अंदर। आपने कभी नहीं सुना होगा द्वापर युग में महाभारत के समय, टीवी सीरियल देखा, कितने लोगों ने टीवी सीरियल देखा महाभारत, सभी ने देखा, कभी सुना है टीवी सीरियल महाभारत में ऐसे आवाज आ रही हो, बोले सो निहाल, बोले सत श्रीकाल, आज जरासंध को न छोड़ेंगे, कभी ऐसा सुना हो, या परवरदिगार आज भीष्म पितामह ने कैसी आज कर मेरे पर कर कर दिया है, समय से हो नहीं रहा है ना, या अली ऐसा सुना कुछ, या फिर सुना ओ गॉड अर्जुन इज गिविंग मी टफ टाइम ऐसा सुना कुछ, या फिर किसी ने कहा हो, कभी गए हो दुर्वासा ऋषि किसी के घर पर, भिक्षम शरणामी ऐसे कहीं बोला हो। लेकिन वहां पर सभी लोग जानते थे केशव धृता, केशव जो है वो आए हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, सभी जानते हैं। तो द्वापर युग से चला आ रहा है ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान किस लोगों के लिए है, वो लोग बोलते हैं गीता जी उनके लिए है जिनके बालों का रंग सफेद हो गया है। वैसे तो अच्छा है यहाँ पर अधिकतरों का सफेद है, तो आप लोगों के लिए तो है ही, लेकिन कई बार स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जी उनके लिए है, भगवत गीता इज मैंट फॉर रिटायर्ड पीपल, है ना, जिन लोगों ने अपने जीवन में कार्यशैली से रिटायरमेंट ले लिया है, थक गए संसार से, या फिर सरकार ने कह दिया अभी आप 58-60 वर्ष के हो गए, अब आप अपने घर में बच्चों की देखरेख के लिए या फिर कार्य करिए समाज के लिए, सरकार के लिए मत करिए, तब उन लोगों के लिए गीता बनी है। ऐसा है क्या? सच है? आप देखिए, भगवान ने अब आपको उत्तर देना है यहाँ पर, आपकी बौद्धिक समझदारी का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। अर्जुन, भगवान ने चार वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्जुन कौन से वर्ण के थे? हाँ जी, क्षत्रिय वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। ब्राह्मण थे ना, शूद्र थे ना ही वैश्य थे, क्षत्रिय थे। अब ये बताइए कि कौन से आश्रम के थे, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या फिर वानप्रस्थ आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम? गृहस्थ आश्रम के थे। तो आप लोग भी गृहस्थ आश्रम के होंगे, ऐसा है कोई यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में ना? सभी गृहस्थ आश्रम। इसका मतलब अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया वो हमारे लिए भी है। अब तीसरा प्रश्न है, क्या अर्जुन ने किसी पार्क में जाकर बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैठकर के मेडिटेशन करकर ज्ञान को प्राप्त किया, या फिर ऐसी परिस्थिति में ज्ञान को प्राप्त किया जब जहां पर सबसे मुश्किल परिस्थिति थी, अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए आतुर हो गए? कैसी परिस्थिति थी? अपने ही परिवार के लोगों को मारना, आप सोचिए। आपके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, पत्नी ने कुछ कह दिया और सास ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, उसी में विचलित हो जाता है। या फिर इस संघ में आए, कोई स्वागत ना करे, या फिर कोई अगर आपको बुरा भला बोले तो मन को पहुंचती है, खटपट हो जाती है, 3 दिन नहीं आते हैं, फिर फोन किया जाता है कि अरे बड़े दिन हो गए आप आ नहीं रहे हैं, फिर आप लौट कर आते हैं पुनः, क्योंकि हम अभी तक शरीर मान रहे हैं। अगर किसी ने शरीर को कह भी दिया तो कह दिया, हम तो कौन है? सच्चिदानंद आत्मा है। इसको जो समझ जाएगा ना, इस संसार से उसका मैत्री भाव उत्पन्न हो जाएगा, वो भक्त अजात शत्रु बन जाएगा, उसका कोई संसार में शत्रु नहीं होता, जो जिससे मिलेगा प्रेम से मिलेगा। तो ये गृहस्थ है, और ऐसी परिस्थिति में जब सबसे ज्यादा परेशान करने वाली परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये सुनो गीता का उपदेश। क्योंकि भगवान के द्वारा ये गीत गाया गया, इसलिए भगवत मतलब भगवान से जुड़ा हुआ और गीत मतलब गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गाना। तो ये पहला ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो कि भगवान के द्वारा गाया गया। हम इतने सारे गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, क्या कभी गीता को गाया है आपने? ये देववाणी है। जिस दिन गीता गाना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे आपकी चित्त शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगी, आहार शुद्धि होगी, और आप देखेंगे आपके वातावरण की शुद्धि होगी। तो अगर हम चाहते हैं समाज को, इस समाज को आगे विस्तार करें, आज इस्कॉन केंद्र के पूरे विश्व में 700 मंदिर बन चुके हैं। तो अभी एक मंदिर हम बना रहे हैं द्वारका में, जिसका नाम रखा है वैदिक एजुकेशनल कल्चरल सेंटर। इस वैदिक ज्ञान को सबको देना बहुत जरूरी है। शारीरिक ज्ञान तो हमारे पास है, प्रोफेशनल ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अभी मिसिंग है। लोगों से पूछो ना भगवान कृष्ण कौन थे, तो आधे से ज्यादा लोग तो जानते नहीं है। अगर कोई जानता भी है तो कहते हैं द्वापर युग में विष्णु के अवतार हुए थे। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण द्वापर वेद व्यास 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए। एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग युग में इंद्र के दुश्मनों पर वार करने के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। जहां जहां धर्म की आवश्यकता है मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो लोग बोलते कलयुग में भगवान क्यों नहीं आ रहे, इतना कलयुग बढ़ गया है। कलयुग में भी भगवान आए हैं अपने नाम के रूप में। आप देखिए त्रेता युग में वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, रामायण में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कहते हैं कि नहीं, नाम का आधार है। भगवान के नाम पे पत्थर तर गए तो क्या हम नहीं तरेंगे? तो अगर तैरना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेना हमें आवश्यक है, हमें लेना पड़ेगा। और आज देखिए ऐसे ऐसे विदेशी मलेच्छ क्रिश्चियन इस्लामिक लोग थे जो भगवान के नाम थे, आज आप देखेंगे कंदराओं में बैठकर ऋषि मुनि बन गए इस्कॉन केंद्र के कारण। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, उनका पीछे एक चित्र दिया है। 70 साल की उम्र में, कोई कम उम्र में नहीं, 70 साल की उम्र में उन्होंने विश्व परिवर्तन कर दिया अपने गुरु की आज्ञा। जब आप गाना गा रहे थे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुजी का जो बड़ा मान्यता दी जाती है, तो गुरुजी ने कहा था जाओ प्रचार करो विश्व में इस भगवत गीता के ज्ञान को प्रचार करो। और ऐसा हुआ, इस ज्ञान से आज 86 लैंग्वेजेस में 86 भाषाओं में हमारी इस कौन की भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आज पढ़ा जा रहा है। एक आदमी के द्वारा नहीं, 86 भाषाओं में। फ्रांस जाएंगे, गीता मिलेगी, तिलक लगाए हुए धोती कुर्ता पहने लोग मिलेंगे। फोर्ड मोटर्स, जिनकी गाड़ी में आप घूमते हैं, उसके जो मालिक हैं मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड, वो भी आज स्कॉन के भक्त हैं, धोती कुर्ता पहनकर ऑफिस जाते हैं। हमने वो पेंट शर्ट ले लिया है जो कि विदेशियों का था, लेकिन हमारे समाज का ऋषि मुनियों की जो बाह्य थी शैली, इसको हमने भूल गए। जब मैं मेट्रो में चलता हूं ना, तो लोग पलट पलट कर देखते हैं, कहते हैं पता नहीं अजीब गरीब आदमी चिड़ियाघर से कैसे छूट गया। उनके लिए तो मैं अजीब परिंदा हूँ जो एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर है, है ना। मैं दिखता है कैसा व्यक्ति है, फिर सोचते हैं कोई गांव का होगा, फिर कोई सोचता है पंडित होगा, कुछ कुछ लोग कैसे कैसे बोलते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं हमें भगवान की सेवा करनी है, उसका दिया हुआ शरीर उसकी सेवा में लगना है। तेरा तुझको अर्पण लगता है ना, आप अपना समय भगवान को नहीं देते, आप अपना शरीर भगवान को नहीं देते। कहते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा कर ली, उसने सबसे बड़े राष्ट्र की सेवा करी है। गीता का पहला अध्याय पढ़े, ये महात्मा गांधी लिखते हैं, जिसने गीता पढ़ लिया उसने राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा कर दी, क्योंकि वो आदमी 26 गुणों उसके अंदर आ जाएंगे, जिन गुणों को आप अपने जीवन में कभी अर्जित नहीं कर सकते, वो 26 गुण उसके अंदर आएंगे। विद्या विनय संपन्न, विनम्रता आएगी, कैसे आएगी, ऐसी आएगी विद्या से, ये शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र हमारे शस्त्र है, इनको मत छोड़िए। 1857 में एक विदेशी व्यक्ति आए थे हिंदुस्तान में, कौन, लॉर्ड मैकॉले। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के पास दो ही चीजें हैं, एक इनके पास में इनकी कल्चर है और एक इनके पास इनकी एग्रीकल्चर है, दोनों को तोड़ दो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इस पर हम ब्रिटिश सरकार आ जाएगी आराम से। और उन्होंने वही किया, हम पर आ गए, ब्रिटिश सरकार आ गई, विदेशी रूल आ गया, लेकिन हमारी दो पीठ उन्होंने तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी, कल्चर और एग्रीकल्चर पे मॉल बना दिए। सुबह सुबह तो हम लोग संघ में आते हैं, शाम को मॉल में घूमने जाते हैं। मॉल में जाकर क्या सोचिए, हर व्यक्ति, आज कितने लोग हैं हिंदुस्तान के हिंदुत्व जो कि अपने बच्चों को किसान बनाना चाहते हैं, सब लोग बनाना चाहते हैं, एक किसान बनाना चाहते हैं, जमीन नहीं है, क्यों, जमीन कहां चली गई, हाउसिंग सोसाइटी, DDA, है ना, इतने सारे हमने डेवलप किए, मॉल, मॉल से माहौल ही बदल गया है पूरा है? और आप बोलते हैं जब भूख लगती है मॉल में क्या मिलता है, वहां पे माइक्रोचिप्स मिलती है, वहां पर मिर्गा बर्गर मिलता है, बस मैं समाप्त करता हूं। तो जब भूख लगती है तो क्या खाएंगे, इंजीनियर के बनाया हुआ, आपको बोल सकता है मैं इंजीनियर, आपका बेटा क्या है, मेरा बेटा है ना अमेरिका में इंजीनियर है, बहुत अच्छी बात है। भूख लगती है तो क्या खाता है, माइक्रोचिप खाता है, पेट भरता है। पापा आज भूख लगी थी 25 GB खा लिया ना, पेट भर गया। बेटा मम्मी के लिए एक टीवी लिया जरा, 1 TB टेराबाइट ना, वो भी खा लेगी, बहुत सुबह से उसने आज व्रत किया हुआ है, ऐसा होता है। या फिर डॉक्टर बनाया बच्चे को, बोले जब भूख लगेगी एक पैरासिटामोल खा लेना, ब्रेकफास्ट हो गया, और एक वोवरान खा लेना दोपहर में, लंच हो गया, रात को इंजेक्शन इंसुलिन का लेके सो जाना, डिनर हो गया, ऐसा होता है। खाने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन कृषि के प्रति हमारा कोई रुझान नहीं। तो हम लोगों को सच्चा योग करना चाहिए। योग है भगवान, योग शब्द का अर्थ कौन बता सकता है यहाँ पर, योग का अर्थ क्या है शास्त्र की दृष्टि से। मैं अपना इसमें एक भी वृतांत बोलूं तो आप मुझे पकड़कर यहीं बंद कर लीजिएगा, इसमें सब कुछ है गीता। योग शब्द का अर्थ क्या है, जोड़ना, दो योग, दो मतलब चार, योग मतलब जोड़ना, तो किससे जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना है। जैसे केशव, डॉक्टर केशव ने जब ये संघ स्थापना की, उनके पिता ने, उनका नाम केशव है, उसके बाद भी संघ के आगे के जाकर के जो रहे हैं, कौन है उनका नाम बताएंगे, डॉक्टर केशव जो थे उन्होंने आगे जाकर के माधव, माधव जी, माधव गोलवेकर को जाकर के इस संघ को प्रदान किया, उनका नाम भी क्या था, माधव। किसका नाम है माधव, आप देखिए आप ही के संघ में कृष्ण भक्त प्रकट हुए हैं, लेकिन आप ही हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। तो आप संघ को और शक्तिशाली बना सकते हैं अगर यहाँ पर अनिल जी की कृपा से भक्त गीता पढ़ने लग जाए, तो बहुत मजा आएगा। जब गीता संघ में प्रवेश करेगी तो ये सच्चा एकदम संगठित संघ बनेगा, क्योंकि इसके अंदर शास्त्र भी होगा और इसके अंदर शस्त्र भी होगा। शस्त्र आपके पास, लाठी आपने चलाई बहुत सुंदर, लेकिन शास्त्र आ जाएगा तो शस्त्र और शास्त्र का जो संघ मिलेगा उससे बहुत सुंदर आ जाएगा। मिस्टर बाल ठाकरे जी को जानते होंगे आप, वो भी संघ चलाते हैं, और बाल ठाकरे जी ने कहा कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू मंदिर नहीं बनने दिया ना, तो मतलब समझ लो हमने संघ के अंदर अभी 1% पसीना नहीं बहाया। तो हमारा जब बॉम्बे का मंदिर बन रहा था तो अंग्रेज लोग उसको तोड़ना चाहते थे, कहते थे इसमें विदेशी लोग आ गए हैं, ये CIA के एजेंट है, इस्कॉन वाले इंटरनेशनल है ना। तो बाल ठाकरे को जो पता चला, उन्होंने कमिश्नर को फोन लिखा और कहा कि अगर अपनी गद्दी चाहते हो तो जाओ तुरंत इस मंदिर को रुकवाओ, क्योंकि ये जो मंदिर है ये हिंदुस्तान के हिंदुत्व का प्रतिबिंब है, ये स्थापना है, ये बेस है हमारा, अगर मंदिर समाप्त हो गए तो कुछ नहीं बचने वाला, तो इस मंदिर के लिए जी जान लगानी चाहिए। और फिर इस्कॉन आज जुहू पे जो मंदिर है उसमें बाल ठाकरे जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उनके संघ का, उनके उनके लोगों का। तो ऐसे ही द्वारका में एक मंदिर बनने जा रहा है जिससे लाखों करोड़ लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है और होगा आगे भी। तो आप लोगों से आशा है आप सब उस मंदिर में आए और उस मंदिर के लिए एक स्क्वायर फिट जमीन कम से कम आप दान दें और उस मंदिर को बनाने में आप सहयोग दें। उसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है समाज और भगवान की सेवा के लिए। तो सबसे बड़ी सच्ची सेवा यही है जब हम किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ दें। एक अंतिम शब्द कहूंगा उसके बाद समाप्त करूंगा। हमारा 6 दिन का एक कार्यक्रम रहता है, किसी दिन आप यहाँ पर आयोजन करा सकते हैं। उसमें 6 दिन में हम 6 कार्यक्रम करते हैं। पहले दिन का कार्यक्रम है आनंद की खोज, जैसा कहा डिस्कवर योरसेल्फ के जनक है प्रशांत मुकुंद। तो मैं जनक नहीं हूँ, जनक तो कृष्ण है और उन्हीं के ज्ञान को हम क्रिएटिविटी से आगे पीछे कर कर लोगों को प्रस्तुत करते हैं। जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। आज कलयुग के लोग चाहते हैं लैपटॉप के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाए तो उनको लैपटॉप से दिया जाता है। आप चाहते थे मैं कुर्सी पर बैठ कर दूं, मैंने कुर्सी पर दिया। कभी जाते हैं जेल में क्लास देने के लिए, वहां कैदी कहते हैं खड़े होकर दीजिए, हम नाचना चाहते हैं, जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। जैसी रही भावना जिसकी तो वैसे ही हम उनको ज्ञान देते हैं। तो उसमें आनंद की खोज हमारा 6 दिन का कार्यक्रम है। दूसरे दिन बताते हैं आनंद की खोज में कि आनंद क्यों हमारे जीवन से चला गया है, क्योंकि हमने अपने पिता का, परम पिता का हाथ छोड़ दिया है। परम पिता का हाथ पकड़ लेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। तो लोग पूछते क्या परम पिता है, तो दूसरे दिन हम बताते हैं हाँ कोई परम पिता है। कौन है वो परम पिता? तो तीसरे दिन बताते हैं कि इतने सारे भगवान की क्या आवश्यकता है। लोग मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का, 33 करोड़ देवी देवता है, भैया कोई भी पकड़ लो। तो देवी देवता तो 33 करोड़ है, लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शंकराचार्य इस्कॉन के नहीं थे, शंकराचार्य कृष्ण भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी शंकराचार्य की अगर आप लिपियां पढ़ें, शंकराचार्य ने लिखा है एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र की गीता। एको देवम देवकी पुत्र एवं, एक ही देवता है देवकी पुत्र एवं। अब देखिए शंकराचार्य ने भी दिया और कहा अंत समय में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बोलिए मेरे साथ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटरी जटरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटरी जटरे शयनम। के संसार खलो दुस्तारे के संसार खलो दुस्तारे ताहि मुरारे पाहि मुरारे भज गो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम जोरदार भज गोविंदम एक बार जोर से भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। माताएं भी बोलेंगी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो ये शंकराचार्य का आखिरी वाक्य था जिससे उन्होंने कहा गोविंद की शरण इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य। संस्कृत भाषा में और बंगाली भाषा में अनेकों ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को मैं कई वर्षों से सन 2002 से पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते इतने विशेष दिनों में, मैं भी साइंटिस्ट हूँ तो ऐसे ही किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ, बाद में MBA भी किया है, तो मैं जो हूँ अपने शास्त्र की दृष्टि से ही ज्ञान को प्राप्त किया, सभी प्रश्नों का उत्तर पाया और उसके बाद इस मार्ग पे लगा हूँ। तो आप लोगों का विशेष धन्यवाद है कि आप इस हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, इन शास्त्र को भी आगे बढ़ाने में हमारा योगदान दीजिए और मंदिर आदि की स्थापना में भी। मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा आप सब द्वारका मंदिर आए और एक बार उस मंदिर के कार्यक्रम में जुड़े और किसी दिन हमें मौका दें, आज तो कम समय है, ताकि हम श्रीमद् भगवद गीता भागवत का यथारूप प्रवचन कर सकें। हरे कृष्ण।